जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रवचन सार की 114वीं गाथा चलनी है। प्रकरण ज्ञान तत्व ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है और मूलतः बात ये चल रही है कि वस्तु का स्वरूप तो केवल ज्ञान गम्य है, बहुत ही गंभीर है, विस्तृत है, जो हमारे वर्तमान ज्ञान के क्षेत्र में आसानी से पकड़ में नहीं आता। देखो इसकी टीका की दो पंक्तियां पढ़ता हूं। वस्तुतः सभी वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप देखने वालों के क्रमशः सामान्य और विशेष को देखने वाली जानने वाली दो आंखें हैं और एक का नाम है द्रव्यार्थक और एक का नाम है पर्यायार्थक। इतनी इन पंक्तियों पर अपन अभी व्याख्यान कर रहे हैं कि वस्तु के स्वरूप में इतनी विचित्रता है। ये किताब है ना, तो इसमें बारीकियां भी बहुत हैं। हम कितना ही वो लगा लगा कर देखते हैं तो भी उससे सूक्ष्म से सूक्ष्म एक परमाणु तक है ना, और इसका विस्तार भी बहुत होता है। अब अपन को जीभ को देखना है, इसमें उदाहरण जीभ कहीं दिया है ना, तो जीभ की लंबाई तो इतनी है कि अनादि से लेके अनंत काल तक, चौड़ाई इतनी है कि असंख्यात प्रदेशी सारा लोकालोक प्रमाण, और मोटाई इतनी है कि उसमें अनंत गुण है। तो क्या लंबाई चौड़ाई और मोटाई अपने आत्मा की आप चलती है ना, कि आत्मा कितना लंबा है, कि अनादि काल से है और अनंत काल तक रखेगा। काल की अपेक्षा जो नाप होता है उसे लंबाई कहते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा जो नाप होता है उसे चौड़ाई कहते हैं। तो असंख्यात प्रदेशी ये चौड़ाई है, और गुणों की अपेक्षा जो बात होती है उसे मोटाई कहते हैं। ख्याल में ना, वस्तु तो है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव हुए, तीन चीजें हो गई कि आत्मा कितना लंबा चौड़ा मोटा है। अब इतना लंबा चौड़ा आत्मा को हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं है कि इसकी आदि से लेके अंत तक इसे देख लें, माने इसकी हम पूरी लंबाई देख लें, ऐसी हमारी वो शक्ति नहीं है। 2 किलोमीटर लंबा एक रोड है, यहां सामने बिछा हुआ है। अब अपनी आंख में इतनी ताकत नहीं कि 2 किलोमीटर देख लें, तो हमें रोड सामने जितना है एक आध फल्ला उतना दिखता है, 100 मीटर दिखता है यहां यहां मिला करके। आगे है तो हम देख नहीं सकते, लेकिन अनुमान करके जान तो सकते कि है। तो ऐसी अनादि से लेके अनंत काल तक अनंत पर्याय हैं, और एक पर्याय हमारे सामने है बस, जिस हम इस पर्याय को, ऐसे मनुष्य पर्याय को हम देखते हैं जीव के रूप में, ये लंबाई में तो कितनी पूर्व पर्याय चली गई और कितनी भविष्य की पर्याय आने वाली हैं, वो हमारी दृष्टि से ओझल है। और कहने को तो यह है कि हम एक मनुष्य पर्याय को देखते हैं, लेकिन मनुष्य पर्याय भी आपने किसने कहां देखी? हमारा बचपन आपने देखा है? नहीं देखा ना। तुम्हारा बुढ़ापा हम नहीं देख पाएंगे। मैंने पूरा कहां देख पा रहे, एक आदमी को पूरा हम कोई कहां देख पा रहा है? है? या उसका हम एक पर्टिकुलर हिस्से देखते हैं, जो 5 साल आप यहां रहे वो हिस्सा हमारे ज्ञान का गेय बनेगा। पर हम क्या करते हैं रोजाना, उन 5 साल में भी 2-5-10 दिन ऐसे आते हैं कि जो तुम हमारे सामने आते हो, नहीं तो तुम हमारा प्रवचन सुन के चले जाते हो, हम सुना के चले जाते हैं, मिलना होता ही नहीं है। इसका काय का देखना जानना है, क्यों? अकेले मुड्डे मुड्डे से जान लेते, इतने लोग बैठे हैं बस। तो आप चार पांच दिन मिले, क्यों? जो अच्छे ढंग से मिले, और उतने ही आधार पर हम कहते हैं वो लड़का बहुत अच्छा है, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो दंड है। जो भी हम डिसीजन करते हैं आपके बारे में, वो कितने से छोटे पीरियड को हमने देखा है, और उतने छोटे से पीरियड में देख के हमने सारा निर्णय कर लिया। और ऐसा है कि भाग्य से कोई आदमी हमारी किताबें पढ़ता है, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं, और यहां वहां सुनता है, टीवी पे सुनता है, तो उसे इच्छा होती है कि हम इन्हें देखें। बेचारा कहीं से आता है बम्बई कलकत्ता से चल के, उसके समय ले लो आकर के। अभी भाग्य से वो जिस समय आए उस समय हमको बहुत बीमार हो, वोमिटिंग हो रही हो, दस्त लग रहे हो, अस्पताल में पड़े हो, गुस्से में हो, किसी को डांट रहे हो, कुछ भी, कोई भी एक पोजीशन हो सकती है ना। जो पोजीशन हमारी 24 घंटे की नहीं है, और वो ऐसी हालत में देख के जाएगा, उसके दिमाग में तो वही रूप हमेशा रहता है क्या, कि वो तो बहुत गुस्सा लें, वो तो बहुत गुस्सा लें, हम तो गए थे साहब इतनी दूर से गए थे मिलने के लिए, 5 मिनट का समय नहीं दिया मिलने का है? अब तुम्हें क्या पता उसकी कितनी तबीयत खराब है, क्या है, जोर का लेटरन आ रही है, उसे लेटरन में भागना है जल्दी, पेशाब लग रही, जोर की वहां जाना है। अब तुम्हें देखा हमको, हम कहे दो मिनट, 1 मिनट में, 2 मिनट खड़े नहीं है, क्या का आदमी है, आदमी की कीमत ही नहीं है जिसको। ऐसा ही होता है ना, माने हम बहुत छोटा हिस्सा देखकर उसके सारे के बारे में निर्णय कर लेते हैं। ये तो लौकिक उदाहरण है। अब हमने आत्मा का भी ये हिस्सा देखा छोटा सा, ये मनुष्य पर्याय यही कितना छोटा हिस्सा है, काल की अपेक्षा वस्तु का बहुत छोटा हिस्सा है, और इसको ही देख के आधार पर हम सारे डिसीजन कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि इसका सही चीज को समझने के लिए हमारी 2 आंखें होनी चाहिए, एक द्रव्यार्थिक चक्षु लिखा है इसमें और एक पर्यायार्थिक चक्षु। पर्याय अत्यंत सूक्ष्म है और द्रव्य अत्यंत विस्तृत है। क्या मतलब समझे, अनादि अनंत, अनंतानंत काल में जो अनंतानंत पर्याय है उनका अनुस्यूति से रचित जो प्रवाह है उसका नाम है द्रव्य। अभी पर्याय की अपेक्षा घटित कर रहा हूं, प्रदेश पे बताऊंगा, फिर गुण पे बताऊंगा, अब समझ में आए ना। ये इसका नाम है द्रव्य, ये हमारी पकड़ में नहीं आ रहा, और पर्याय तो पकड़ में आ रही ना। कहते पर्याय ये जो हमारा समय है ना, 8 घंटा अपने प्रवचन के लिए लिया है, तो इसमें अनंत समय है और पर्याय एक समय की होती है। तो ना असली पर्याय हमारी पकड़ में आ रहा है, ना असली द्रव हमारी पकड़ में आ रहा है। जो हम कहते हैं हम द्रव को जानते हैं और पर्याय को जानते हैं, हमारा ज्ञान तो क्या है। पंडित यहां चैनसुदास जी थे, बहुत अच्छे बड़े विद्वानों में से थे, जिस संस्कृत कॉलेज में आप लोग पढ़ते हो उसके सबसे पहले फाउंडर प्रिंसिपलों में से थे वो। वो एक बात कहते थे बहुत मार में, हमारा ज्ञान क्या है, क्या दम है। हम पूछते हैं कि साहब इसमें आ रहा है केशव की पत्रिका में अर्जुन, तो अर्जुन में क्या होता है, क्यों क्या होता है अर्जुन, एक पांडव है पांचों में से, है ना। चांदी को अर्जुन कहते हैं, अर्जुन नाम का एक पेड़ पौधा भी होता है। उसमें लिखा है रामचंद्र का में, अर्जुन भीम महामति लेखो पांडव की प्रतिमा से देखो। तो वो कहते हैं हमारा ज्ञान क्या है, हमने वो अर्जुन नाम का पेड़ देखा नहीं कहीं। हम तो कहते हैं अर्जुन नाम वृक्ष विशेषा, बच्चे है हमारी पंडिताई, अर्जुन नाम का एक पेड़, फलाना नाम का एक फूल, फलाना नाम का एक राजा, एक जंगल में रहने वाला एक शेर। अब कौन है, कहां, कैसा, बस एक शेर, एक जंगल, एक राजा, एक रानी, उसकी इतनी बस हमारा ज्ञान का कितना स्थूल स्वरूप है, हम उसको कहां जानते हैं किसी भी चीज को है? और इसको ही कह देते हैं, हमने इतना कह दिया आपके ये किसी वृक्ष का नाम है, तुम संतुष्ट हो जाते हो, नहीं हो तो क्या करो, हमको इतना ही आता है तो हम और क्या करेंगे। कोई अर्जुन नाम का पेड़ है तो हमें बता दे चलो कहां है, कि यहां है, यहां है क्या नहीं है, कि हमें क्या पता। हम जब पहचानते नहीं है, उसे हमने देखा नहीं है, तो हम यहां नहीं है भी नहीं कह सकते और है भी नहीं कह सकते। तो इस हमारा ज्ञान का इतना स्थूल स्वरूप है कि जो जिस आत्मा का ज्ञान हमें करना है, वो आत्मा कितना लंबा चौड़ा है, लंबा है, लंबा माने वही अनादि से अनंत काल तक, उसका कितना सा छोटा हिस्सा हम जानते हैं, और ना वो द्रव्य ना वो पर्याय, अनादि अनंत नहीं है इसलिए द्रव्य नहीं है, और एक समय की नहीं है इसलिए पर्याय नहीं है, अनंत समय का मिला हुआ है। अब हम क्या करते हैं मालूम है, पूरी जिंदगी वाले को कह दिया, मनुष्य को कह दिया द्रव्य, और जवानी को कह दिया पर्याय, माने ना वो पर्याय असली है ना वो द्रव्य असली है। थोड़ा लंबी पर्यायों का सिलसिले को हमने द्रव्य नाम दे दिया, आप समझिए ना, और थोड़ी कम को हमने पर्याय नाम दे दिया, कहिए मिट्टी, तो मिट्टी वो है द्रव्य क्या, और फिर वो घड़ा उसकी पर्याय है, हैं? तो कहते पिंड घड़ा पर्याय है, तो मिट्टी को कौन सी मिट्टी, कैसी मिट्टी, अनंत पुद्गल परमाणु होगा पिंड, वो द्रव्य है, हम मिट्टी नाम के द्रव्य को नहीं जानते हैं, आज तक देखा नहीं है, परमाणु को देखा हो तो हम उस मिट्टी नाम के द्रव्य को देखे पुद्गल को, और ना हम उसी पर्याय को भी जानते हैं। तो ये इतना लंबा चौड़ा है कि हमारे ज्ञान में आता ही नहीं है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास दो आंखें हैं, एक द्रव्यार्थ की चक्षु और एक पर्यार्थ की चक्षु। ये प्रमाण की तो अभी बात ही नहीं करते हैं क्या, क्योंकि तीसरा एक हमारे पास प्रमाण भी है। वो हमारा ये प्रमाण कैसा है, यहां तो हम कहते हैं केवल ज्ञान प्रमाण है, जिसमें सारा लोकालोक एक एक अणु एक एक चीज झलकती आती है, और ये तुम्हारा प्रमाण कैसा है, कि द्रव्य पर्याय को एक साथ जाने, क्यों ये कहेगा ये जीव भी है और मनुष्य भी है, प्रमाण हो गया क्या, ये मनुष्य है ये पर्यार्थक में का कथन हो गया, ये जीव है ये द्रव्यार्थक में का कथन हो गया, और मनुष्य भी है और जीव भी है ये प्रमाण का कथन हो गया है। न मनुष्य है न जीव है, क्या है, जो सो चेवे, जो है सो है, बस ये अनुभव हो गया, न जीव है, आप समझिए ना। तो इसको समझने के लिए हमारी दो आंखें, अब इन दो आंखों का प्रयोग कैसे करना वो इसमें बताया जाता है। देखो हीरा होता है ना हीरा, तो हीरे को देखने के लिए वो होता है क्या क्या, वो लेंस, वो लेंस में उसे देखते हैं तो उसकी बारीकियां दिखाई देती हैं। तो वो लेंस में एक आंख को लगाते हैं तो दूसरी आंख भी खुली रहे तो वो उससे उतना साफ दिखता नहीं है, इसके लिए इस आंख को बंद होना बहुत जरूरी है। वो बंद होना नहीं, पूरी तरह बंद होना, मई च निमीलित नये नये जैसा, ऐसा बिल्कुल समझे ना, जहां रंज मात्र भी दिखाई देने की गुंजाइश नहीं रहे तो वो आंख एक आंख काम करती है। अभी हमारा तो हीरे ही का काम है, रोजीना हमको ये करना पड़ता है, और इस आंख को बार बार हमको बंद करना पड़ता है। जब हमारे काम ही नहीं आती है तो फोड़ ही लो ना, ऐसे भी लोग होते हैं कुछ बुद्धिमान जगत में है, पर्याय से मैं की चक्षु जब हमें काम में ही नहीं लेना है, क्योंकि द्रव्य को देखने से ही आत्मा का कल्याण होगा, पर्याय को देखने से तो आत्मा का कल्याण होगा नहीं, इसलिए हम पर्यार्थक नाम की चक्षु को तोड़ ही दें, छोड़ ही दें, तो वो उससे वो एक आंख को तुम फोड़ लोगे तो एक आंख नहीं फूटेगी, पूरा व्यक्ति काना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्या आंख कानी नहीं होगी, आंख तो फूट ही गई है? काना किसे बोलते हैं? जिसकी एक आंख फूट गई हो उस व्यक्ति को काना कहते हैं ना। तो तुम एक पर्याय को यदि पूरी तरह से उपेक्षा करोगे तो तुम्हारा पूरा वस्त्रमान की व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी। क्या? अब दो शर्तें हैं कि बंद होना चाहिए पूरी तरह और फूटना नहीं चाहिए। और एकांत काय का नाम है कि या तो हम फोड़ने को तैयार हैं और या बंदी करके तैयार नहीं है। हम तो दोनों ही आंखों से देखेंगे, एक से क्यों देखें? हम तो एक से क्यों देखें? हमारे जब दोनों हैं तो हम दोनों ही से देखेंगे। ख्याल नहीं ना? तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, तुम्हें हीरे का धंधा करना है तो ये समझना पड़ेगा। अरे वस्तु के स्वरूप को समझना है, आत्मा के तत्व को समझना है तो तुमको ये बात अच्छी तरह समझने पड़ेगी कि वस्तु के स्वरूप को देखने के लिए जनागम में दो नए कहे गए हैं। लिखा ना, दो आंखें हैं, आंख ही का उदाहरण दिया, तो देखने की दो आंखें हैं। अब क्या करें, जो हमको हीरे में जो दिखाई दिया बिल्कुल एक आंख बंद करके, वो निश्चय की खोली हमने, व्यवहार की बंद कर दी और पूरी अच्छी तरीके से उसकी सारे जीरम मीरम जो भी है वो सब दिखाई देगा। तो असली तो वही जानना है ना, इसमें क्या डिफेक्ट है। और हमने उस कीमत समझ ली कि जिसमें से कीमत है। फिर आप लोग कहते हैं कि देखो साहब, जीरम तो है, ये तो है इसमें डिफेक्ट, लेकिन कोई ऐसा लगा के तुम्हारी अंगूठी में देखने नहीं आएगा। तुम अंगूठी में लगाओगे ना ऐसे, और वहां से देखेगा कि अंगूठी हीरे की पहने हैं, उसको वो जीरम नहीं दिखेगी, बिल्कुल ये बन हीरा दिखेगा। क्यों? इसलिए ये बन हीरा खरीदने में ज्यादा पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। ये ले लो, एक बटा चार भाव में आ जाएगा और बिल्कुल वैसा ही लगेगा। कहते कि नहीं कहते हैं? और वो नकली बेचने वाली भी यही कहते हैं कि मूर्ख दुनिया क्या समझे, अच्छे अच्छे जौहरी नहीं पहचान पाते हैं कि जी असली हीरा है कि नकली है। ले जाओ, तुम बड़े आदमी हो ना, सब हीरे ही समझेंगे। और कोई गरीब पहन लेगा तो हीरे को भी कहां समझेंगे? समझेंगे कि नहीं समझेंगे? क्योंकि वो हीरे कोई कहां देखता है, तुम्हारी शक्ल देखता है। माने ये बात मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अंदर देखने की, वो कभी कभी देखने की चीज है, वो उसमें से हीरे को देखना, वो कभी कभी देखना ये बात अलग है। हमें तो दिन भर देखना पड़ता, तुम दिन भर 100 हीरे देखना पड़ते हैं, एक एक हीरे के हिस्से में तो कभी कभी आया ना, फिर बहुत रेयर हुआ ना। समझ में आए ना? तो एक वस्तु के स्वरूप को हम ऐसा जकड़ के देखेंगे तो बहुत कभी कभी होगा। अब वो ये कह रहे हैं, देखो अभी सीधी वही बात कह रहे हैं, मनुष्य देव और नारकी, इनने उदाहरण दिया ना, मनुष्य देव नहीं है और देव मनुष्य नहीं है। और दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो मनुष्य आत्मा है और देव भी आत्मा है। तो क्यों? दोनों एक ही हो गए ना। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देना पड़ेगा, देव को देव नहीं रहना देना पड़ेगा, दोनों में जो वो आत्मा है, अब आत्मा तीसरा शब्द खड़ा करना पड़ेगा। क्या? अब तुम कह रहे हो आत्मा वाली ही चक्षु हमेशा खुली रखो, ऐसा कुछ लोगों का आग्रह होता है, तो देह वाली देखो ही नहीं। तो आत्मा वाली चक्षु खुली रखोगे तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनादि अनंत में दिख जाएगा, तो तुम्हारे ध्यान का ध्येय तो वो हो जाएगा, उसमें अपनापन स्थापित करोगे तो सम्यक दर्शन तो हो जाएगा। और ध्यान करोगे तो केवल ज्ञान भी हो जाएगा, ख्याल में आए ना। लेकिन ये मनुष्य है, इसकी इतनी आयु है, ये ऐसे खाते पीते हैं अथवा ऐसा कि ये आलू है, इसमें अनंत जीव है, ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको मर ना जाए, ऐसा जीव जो समझाना है ना तुम्हें चरणानी योग वाला, वो नहीं, वो काम नहीं आएगा उसे, वो चक्षु वहां काम नहीं आएगी, जो व्यार्थिक चक्षु, उसे तो पर्याय वाली चक्षु काम में आएगी। और एक कोई साधारण कथन है, सारा प्रथमान योग, सारा चरणान योग इस पर खड़ा है, ये जीव खान पान ये सब बातें, वो कह गए उन्हें जो कहना था, और हमने तालियां बजा दी, और हमने कह दी कि बिल्कुल सच्ची है, है? अब कुछ बचा ही नहीं कहने का, क्यों? ऐसा मुफ्त का त्याग, उसका नाम जैन धर्म है। कि मैं रात को ही हम कुछ खाने ही नहीं है, तो हमने ये छोड़ा, ये छोड़ा, छोड़ा पांच सुबह 5 बजे तक के लिए, और उसमें भी छूट रख ली कि कभी यदि जरूरत पड़ी तो रात के 12 बजे तो बंद किया खाना, और सुबह 5 बजे तक के लिए लिया छोड़ा, तो उसमें भी छूट रख ली, रोजीना अकाउंट करते थे हम। वो तो बहुत स्थूल बात है जो आपने बताई ना, अभिनमन रूप परिणमन रूप हिंसा, ऐसा जबरदस्ती पाप थोड़ी चढ़ता फिरता है। वो जितने जीवों को हमने मारने का उसका हमें पाप, यदि हमने आलू नहीं छोड़े तो आलूओं का पाप लगता रहेगा। ये पाप के ऐसे भेद कहां पड़े तुमने कि जी आलू का पाप अलग होता है, और जमीकंद का पाप अलग होता है, और लोग भिंडी का पाप अलग होता है, उसका उसका पाप बच जाएंगे, उसे पाप, ऐसा है ही नहीं। मुनिराज इन विकल्पों में कहां उलझेंगे, हम इन विकल्पों में उलझेंगे तब हमारे आत्मा का मोक्ष होगा? ये तो बंध की प्रक्रिया है, ये मोक्ष की प्रक्रिया है ही नहीं। मुझको एक वाक्य कहने का भाव था उनके उसके सारे उस पर, क्या आप बहुत बुद्धिमान हैं, तीव्र आपकी पकड़ है, और आप जो चीज पढ़ते हैं उसको ग्रहण करते हैं, फिर जीवन में अपनाते हैं, ये क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है। यदि भाग्य से आप 2 घंटा 4 घंटा हमारी बात सुनने लग जाओ तो आपका कल्याण हो सकता है। क्या संजय जी? मतलब ऐसा नहीं है, वो एक एंगल है, आप समझ रहे ना, वो एक एंगल है, लेकिन उसका अर्थ ऐसा नहीं है ये मुफ्त का पाप ऐसा पाप है, वो ये ऐसा एक एक चीज का त्याग त्याग ही नहीं है, जैन धर्म का त्याग ही नहीं है। जैन धर्म तो एक जमी कंड छोड़े ऐसा त्याग सामूहिक होता है, एक एक चीज कहां तक छोड़ोगे? मैंने 10 वनस्पति छोड़ी, मैंने 10 सब्जियां छोड़ दी, मैंने आलू छोड़, अरे आलू जैसे अनंत पदार्थ हैं, एक एक का नाम नहीं ले पाओगे, छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, तो कैसे छोड़ें? ऐसे छोड़ो कि जमी कंद छोड़ा कगड़ा कर, मैं रात के 10 बजे तक खाऊंगा, 12 बजे तक, ऐसा क्यों नहीं कर, रात के 2 बजे तक खाऊंगा और सुबह 2 बजे से शुरू कर दूंगा। मेरा विवेक कहने का मतलब हर चीज में विवेक है, कोई इसकी क्या जरूरत? अरे तू 6 बजे तक सूर्य अस्त होता है, आज्ञा है भगवान की कि सूर्य अस्त के बाद नहीं खानी चाहिए, तो तुझे दो उससे दो ही भेद हैं कि खाना है नहीं खाना, तो मैं 8 बजे तक खाऊंगा, मैं 9 बजे तक खाऊंगा, मैं 10 बजे तक चाय पीऊंगा, मैं 11:30 बजे तक, फिर नहीं बजे तेरी मेरी घड़ी में बच गए तेरी घड़ी देखता फिरता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अजीत प्रतिपादन की बहुत पद्धतियां हैं, उन्हें हमें गहराई से समझना चाहिए। वो ये एक पद्धति है कि मनुष्य देव नहीं है, हमको लगता है इसमें क्या बात है, इसमें क्या रहस्य है, है? देव मनुष्य नहीं है, माने हम यहां इस वक्त आत्मा नामक द्रव्य को नहीं देख रहे, क्या मनुष्य नाम की पर्याय को देख रहे, और देव नाम की पर्याय को देख रहे, ऐसा कुछ। और फिर जब कहते कि नहीं, देव भी आत्मा है और मनुष्य भी आत्मा है, और जो वो ही आत्मा है, मारीच वाला महावीर वाला एक ही आत्मा है, तो उस वक्त हम जब आत्मा को देखें तो फिर हमें मारीच महावीर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मारीच महावीर दिखेंगे तो वो राग द्वेष का उदय होगा। मारीच महावीर के प्रति राग आएगा और मारीच के प्रति द्वेष आएगा, ख्याल में आए ना, वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए, इसलिए आंख फोड़ लेना नहीं चाहिए, वो आंख बंद रखना चाहिए पूरी तरह, उस बात को जब समझना हो जब, और फिर इसे समझना हो तो वो बंद रखो, उसे समझना हो तो ये बंद रखो। यानी मनुष्य को मनुष्य जैसा व्यवहार होना चाहिए, है ना। ऐसे वो उदाहरण देते हैं ना कि शेर, शेर तुम कहते हो ऐसा करो तो समदर्शन होगा, इसके बिना समदर्शन नहीं होगा, तो शेर को कैसे हो गया था, कहते ना वो अपना शेर है ना, एक बेचारा यहां खड़ा है, बहुत काम आता है, मैंने जानबूझ कर यहां लगवाया कि जिसे मैं बता सकू ना, हर साल मुझे विद्यार्थियों को बताना पड़े, तुम तो चले जाओगे, नयों को बताऊंगा। कि ये उसने हाथ तक नहीं धोए, उसने कुल्ला भी नहीं किया, मुंह में मांस का टुकड़ा पड़ा, वो महाराज ने प्रवचन शुरू कर दिया और फिर उसकी आंख में आंसू आ गए, पश्चाताप हो गया और उसकी समदर्शन हो गया, क्यों, और अनुमृत ले लिए फटाफट, और वो भी कुल्ला किया कि नहीं किया आता ही नहीं है। तो अब ऐसा कह के हमको कुल्ला नहीं करना चाहिए, ऐसे खाते खाते मंदिर में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ऐसे व्यवहार का समर्थन कर सकते हैं। युगल जी बहुत अच्छा कहते थे कि तेरे को समदर्शन शेर वाला चाहिए और सारी सुविधाएं मनुष्य वाली चाहिए। खाना पीना चाय पानी दूध सब चाहिए मनुष्य जैसा, और समदर्शन शेर जैसा चाहिए। वो तो कोई परिस्थिति में कोई आदमी एकदम निषेध करने लग जाए तो उसके लिए कहना का है कि भाई ज्यादा मत करो, खींचो मत, लेकिन जहां का व्यवहार है मनुष्य पर्याय का व्यवहार मनुष्य पर्याय में रहेगा, और देव पर्याय का व्यवहार देव पर्याय में रहेगा। यहां मनुष्य पर्याय में सात फेरे जब तक नहीं पड़ेंगे तब तक शादी नहीं होगी, और देव पर्याय में एक भी फेरा नहीं पड़ेगा और वे पति पत्नी हो जाएंगे। जो नियोगनी होती ना, नीचे की देवांगनाएं ऊपर के देवों की नियोगनी होती हैं, और वे अपनी अपनी नियोगनी को ले जाते हैं, वहां कोई फेरे मेरे तो पड़ते ही नहीं है, कोई माँ बाप सगाई मंगाई कुछ करते ही नहीं है। तो ये मनुष्य व्यवहार है, ये मनुष्य व्यवहार का सदाचार मनुष्य व्यवहार में चलेगा, और देव व्यवहार का समय सदाचार देव गति में चलेगा, सब जगह का समाचार वहां यथा योग्य चलेगा, उसे हमें समझना चाहिए। इसलिए जो नए वाली जो आंखें हैं, दो आंखें हैं, कौन सी, एक द्रव्यार्थिक चक्षु और एक पर्यार्थिक चक्षु, एक आंख वो पर्यायों की दृष्टि से देखेगी, और पर्यायों की दृष्टि से देखना कि क्या क्या जरूरत है, तो पर्याय की दृष्टि से जब बात करी तो एक समय की पर्याय को नहीं लिया या। 70-80 वर्ष की मनुष्य पर्याय ली, समझ गए ना, और जब द्रव्यार्थक नए से बात करी तो इतना लंबा तो द्रव्य देख लिया कि नहीं नहीं वो तो अनादि अनंत ही लेना पड़ेगा, अब वो असंग प्रदेश ही लेना पड़ेगा, वो अनंत गुण वाला ही लेना पड़ेगा, अकेला ज्ञान गुण वाला नहीं, हमें कहना पड़ेगा सातवीं गाथा में, न ज्ञानम न दर्शनम न चरित्रम। क्या मतलब है, गाय को सुधो, न ज्ञान है न दर्शन है न चरित्र है, माने अकेला ज्ञान नहीं है, अकेला दर्शन नहीं है, अकेला चारित्र नहीं है, अकेले ज्ञान दर्शन चारित्र जैसे अनंत गुण हैं, उनका अखंड पिंड है, ये कहना, वो ये अर्थ है गाथा का, न दर्शनम न ज्ञानम न चरित्रम। यदि ज्ञान का ही निषेध कर दिया, ज्ञान का निषेध नहीं किया है, वो कहते भेद का निषेध किया है, ऐसे तो अनंत गुण है वे अभेद हैं, तो भेद 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 है क्या, अभेद, भेद नहीं मानेंगे तो अनंत नहीं हो सकते, अभेद मानोगे तो भेद टूट नहीं सकते, अलग अलग नहीं, उनकी परिभाषाएं अलग अलग नहीं हो सकती हैं, उनके काम अलग अलग नहीं हो सकते हैं, ज्ञान जानने का काम करे, है ना, सुख आह्लादनाकार है आता ना, वे अलग अलग है अपना अपना स्वरूप, वो स्वरूप हमारे लिए अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ये चर्चा अपन ने 14वीं गाथा शुरू की है, अभी और चलाएंगे इसे दो दिन, इसको ही चलाएंगे, थोड़ी सरल करके चलाएंगे।
ईस